आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम नवीन और रचनात्मक विचारों से प्रेरित होकर एक नए भारत का निर्माण करेंगे, जो विश्व के किसी भी देश से आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता का बहुत मूल्य होता है। वो स्वतंत्रता जो देश के लोगों को अपनी शर्तों पर जीने की सुविधा देती है, उन्हें वो करने का अवसर देती है जो वे करना चाहते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता उस समय बेमानी हो जाती है जब राष्ट्र जीवन के संचालन के लिए आवश्यक नियम भी नजरअंदाज कर दिए जाएं। आज मैं देखती हूँ कि हमारे देश के लोगों की एक सोच ऐसी विकसित हो गई है जिसमें अपने देश की बुराई के सिवा उन्हें कुछ और दिखता ही नहीं। अपने देश, अपने धर्म और अपनी परंपराओं को बुरा और संकुचित कह देने में हम गर्व महसूस करते हैं। हमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी कि अगर अपनी अखंडता को कायम रखना है तो स्वयं को एक रखना होगा। इसलिए आज जब हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो सिर्फ उत्सव तक ही ना इसे सीमित रखें, बल्कि एक बार अपने भीतर झांकें और ऐसे संकल्प लें जो देश के हित में हों और हमारे देश को विश्व स्तर पर ले जाएं, न कि विश्व पटल पर हमारा सर शर्म से झुके। यहाँ मैं अमरीकी लेखक मार्क ट्वेन, जिनकी रचनाएं विश्व प्रसिद्ध हैं, उनकी कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। वे भारत भ्रमण के उद्देश्य से और मुंबई, जिसे तब बंबई कहते थे, वहां व्याख्यान देने आए थे। उन्होंने भारत के विषय में अपने जो भी उद्गार व्यक्त किए हैं, उन्हें आज के समय में हमें पढ़ने और मनन करने की आवश्यकता है। उन्होंने लिखा कि भारत कई मायनों में बाकी दुनिया से अलग है। ये वो जमीन है जहां सभ्यता ने सबसे पहले अपने कदम रखे, परंपराएं सबसे पहले पनपी, सत्य अहिंसा के अमृत का स्रोत भी सर्वप्रथम यहीं से फूटा। लिहाजा इस जमीन को दुनिया का टुकड़ा नहीं बल्कि सांस्कृतिक उपहार कहा जाना चाहिए। मार्क ट्वेन जिस भारत की खूबसूरती को अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, उस खूबसूरती का कोई अर्थ नहीं जब तक देश को एक उचित व्यवस्था, एक प्रणाली ना मिले। गणतंत्र एक ऐसी ही व्यवस्था है जिसे प्राप्त कर 26 जनवरी 1950 को सही अर्थों में भारत रिपब्लिक भारत बना। वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू हुई संविधान की प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्द भर नहीं बल्कि देश के लोगों में एकता का भाव भरता मंत्र है जो दशकों से हम पर जादुई असर डाल रहा है। आज के दिन अपने श्रोताओं के लिए चुभन पर मैं जिनको आमंत्रित करूंगी, उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। दोस्तों, शाबिस्ता ब्रिजेश जी आज हमारे साथ होंगी, जो वीर रस की कवित्री हैं, और जब वे ओजस्विता के साथ काव्य पाठ आरंभ करती हैं, तो हर देशभक्त के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और देशभक्ति का जज्बा दिल में उफान मारने लगता है। चलिए उनको सुनिए, फिर जरूर सोचेगा कि मैंने सही कहा या नहीं।
नमस्ते शाबिस्ता जी, चुभन के पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं अपने सभी श्रोताओं और समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
आपको भी भावना जी और समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं
जी। और शाबिस्ता जी, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खास होता है क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि इसी दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था और आज आप हमारे साथ होंगी और आपकी ओजस्वी और वीर रस से परिपूर्ण कविताओं को हम सुनेंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा।
जी भावना जी, ये हमारा भी सौभाग्य होगा कि आज इतने पुनीत पर्व पर, जो कहना चाहिए कि हमारे तमाम पर्वों से बढ़कर है, उस पर्व पर हमें आपके साथ जुड़ने का और पाठकों के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला।
जी, आपकी रचनाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम भारतीय होने पर गर्व करें। तो कई दिन से मेरे कई श्रोताओं की ये मांग भी थी कि शाबिस्ता जी की वीर रस से परिपूर्ण कविताएं हम नहीं सुन सके जब आप पिछली बार हमारे कार्यक्रम में आए थे, तो इसलिए आज हम खाली वीर रस से ओतप्रोत आपकी कविताओं को ही सुनना चाहेंगे।
जी जरूर, तो
शुरू किया जाए।
और भौगा जी, आपने जैसे आज हमको आमंत्रित किया है कविताओं के लिए, तो जब भी हम साहित्यकार काव्य पाठ करते हैं और विशेषकर एकल काव्य पाठ, तो हम माँ शारदे की वंदना से अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि वाणी वंदना हमारे कार्यक्रम का मंगलाचरण हुआ करती है।
बिल्कुल, होना भी चाहिए शाबिस्ता जी। बिल्कुल,
तो मैं एक
जी, बिल्कुल ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि आप आपसे हम सुनेंगे सरस्वती वंदना। बिल्कुल सुनाए शाबिस्ता जी, स्वागत है।
सुनिएगा कि शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे कि प्रेम में संसार हो, वीणा की वो झनकार दे, कि थाल में आखर के अक्षत भाव का चंदन धरे, लेखनी नवदीप बनकर माँ तेरा अर्चन करे। मांगती हूँ आज मैया मेरे जर जर गीत को माँ, एक नया आधार दे, प्रेम में संसार हो, वीणा की वो झनकार दे, कि दे धरा का धीर हम गंभीर सागर से बने, शैल बन कर के सफलता के शिखर को हम छुए। मांगती हूँ आज तुमसे, मांगती हूँ माँ गगन सा, आज तू विस्तार दे, प्रेम में संसार हो, वीणा की वो झनकार दे, और बांझ ना हो लेखनी हर शब्द पे यौवन रहे, बांझ ना हो लेखनी हर शब्द पर यौवन रहे, सुख से परिपूरित सदा भारत का ये आंगन रहे, तारणों की तारिणी भव से हमें तू तार दे, शायद प्रेम में संसार हो, वीणा की वो झनकार दे।
चलिए शाबिस्ता जी, माँ शारदा का हमें आशीर्वाद मिल गया।
हाँ जी भावना जी, पहले जो है चार पंक्तियों से जो है वो अपना परिचय देती हूँ।
बिल्कुल जी,
एक्चुअल में आप जानती हैं कि हमने दो संस्कृतियों को जिया है, मैंने हिंद सनातन संस्कृत को भी जी रही हूँ और मैंने इस्लामी संस्कृत को भी बचपन से लेकर 28 साल तक बहुत करीब से देखा।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो एक दिन मेरे पति कहने लगे कि शबिस्ता जी, अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हारी लाश को जलाऊं या दफनाऊं।
जी।
तो मुझको लगा कि अगर मैं जलाने की बात करती हूँ तो हमारे मायके वालों को दुख होगा, और
जी।
अगर मैं दफनाने की बात करती हूँ तो ससुराल वालों को दुख होगा
जी।
तो मैं ऐसी कौन सी चीज कहूँ जिससे हमारे ससुराल वाले भी खुश हो जाए और मायके वाले भी खुश हो जाए। चार पंक्तियों के माध्यम से देखिएगा कि कौन सी चीज ऐसी है जो इस देश को जोड़ सकती है। पंक्तियां देखिए कि न तुम हिंदू मुझे लिखना, न मुसलमान लिख देना, न तुम हिंदू मुझे लिखना, न मुसलमान लिख देना, अगर लिखना जरूरी हो मुझे इंसान लिख देना, उन वेदों की ऋचाएं और ना कुरान की आयत को कफन पर मीत मेरे सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना, कफन पर मीत मेरे सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। और मेरा मन कर रहा है भावना जी कि मैं वंदे मातरम पर आज सुनाऊं आपको, क्योंकि ये हमारे शहीदों का नारा था और मेरे ख्याल से कि भारत की माटी में पलने वाले लोग जितने भी हैं सबका नारा जो है वो वंदे मातरम ही है, क्योंकि मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं होता।
बिल्कुल ठीक कहा आपने।
तो यहाँ पर कई बातें जो है वो भारतवर्ष में हुई, तो बींग ए मुस्लिम हम क्या सोचते हैं, मतलब यहाँ पर मैं वो पढ़ूंगी जो मेरे माँ बाप ने मुझको सिखाया है।
जी जी।
तो कुछ लोगों ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो बस इन्हीं को लेकर मेरे मन में भी उद्गार आया कि मैं भी कुछ लिखूं सुनने।
लेकिन शाबिस्ता जी कहा ही नहीं हम उस बात को कह सकते, मतलब एक तरह से कहिए कि वंदे मातरम कहने में जैसे कोई बहुत ही बुरा कोई कार्य कराया जा रहा हो किसी से, ऐसा हमारे देश में एक दौर
जी, जी,
चला
जी।
था।
हाँ हाँ बिल्कुल। तो उस समय जो है वो मुझे जो मेरे माँ बाप ने सिखाया था, और आप मेरे घर चले आइए, मैं अपने मायके की ही बात करती हूँ, अगर आप एक छोटी सी बच्ची से भी पूछे कि वंदे मातरम सुनाओ बेटा, तो वो आपको पूरा राष्ट्रगीत सुना देगी।
जी जी।
जबकि हम लोग भी मुस्लिम हैं, लेकिन चंद लोग जिनको हमारा हमारे समाज का प्रतिनिधित्व मान लिया जाता है, जो मतलब कहना चाहिए कि किसी धर्म के ठेकेदार बनते हैं,
जी, बिल्कुल।
सारी गलत फहमियां वो पैदा करते हैं।
जी, जी।
तो मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा।
बिल्कुल सुनाएं।
कि आस्था का एकता का सभ्यता का भावना का देश का हमारे स्वाभिमान वंदे मातरम, कि आस्था का एकता का सभ्यता का भावना का देश का हमारे स्वाभिमान वंदे मातरम, कि देश पे शहीद हुए देश हित मर मिटे रणबांकुरों का अरमान वंदे मातरम, और रस्सी वाले फने देखो जिसने बनाया हार फांसी वाले तख्ते का गान वंदे मातरम, और माता से ही परिचय बाप का हमें है मिला खून की हमारे पहचान वंदे मातरम। और जो लोग मतलब वंदे मातरम नहीं कहते मुझको भावना जी कोई दिक्कत नहीं होती
जी।
क्योंकि जो माँ का सम्मान करना नहीं जानता वो कहाँ वंदे मातरम कह सकता है। तब पंक्तियां कहती हूँ सुनिएगा, कि देश प्रेमियों के भाल का यही अबीर बना भारती के गाल का गुलाल वंदे मातरम, और चिड़ियों को बाज से लड़ाने का दे हौसला ये नौजवान खून का उबाल वंदे मातरम, और वंदना से इनकार जिनको है गम नहीं कहते नहीं कभी दलाल वंदे मातरम, किंतु याद रखना है जाफरों की संतान देशद्रोहियों के लिए काल वंदे मातरम।
बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
और कोयल की सुमधुर वाणी का है गीत यही गाया नहीं करते हैं काग वंदे मातरम, कि कोयल की सुमधुर वाणी का है गीत यही गाया नहीं करते हैं काग वंदे मातरम, कि बिस्मिल अशफाक भगत आजाद कहे बलिदानी प्रेरणा का राग वंदे मातरम, और ओढ़ के बसंती चोला कहते सुभाष यहाँ बलिदानी फागुन का फाग वंदे मातरम, और सच कहूँ आपसे स्वतंत्रता हमें जो मिली स्वतंत्रता की देवी का सुहाग वंदे मातरम। और भावना जी चंद लोगों की बात को कहा गया समूचे मुस्लिम समाज के लिए कि जो है मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहते, ठीक है, और जो मुसलमान कहेगा वो काफिर हो जाएगा।
काफिर हो जाएगा जी।
तो अब मैं आपको कुरान से ही साबित करती हूँ कि वंदे मातरम इस्लाम में कहाँ जायज नहीं है।
जी, कहा तो यही कहना ना कि जायज नहीं है कोई ना।
जी जी जी, हम और हम भी कहते हैं
जी
जी, कुरान में साफ साफ कहा गया
जी
कि ऐ रसूल तू जो कुछ कहता है वो अल्लाह की बात है, ठीक है, हमने मान लिया।
जी जी,
हमने मान लिया और मैं चाहती हूँ कि तमाम जो भी अगर हमारा यहाँ पर सुनने वाला या पढ़ने वाला हमको पाठक है, मुस्लिम है, तो वो अपनी इसी आयत पर ठहरे। और अब मैं बात कहती हूँ कि
जी
जो रसूल कहते हैं वो अल्लाह की बात है, और जो अल्लाह की बात से इनकार करे वो काफिर है।
काफी बिल्कुल
सबसे पहला वंदे मातरम अगर इस सृष्टि में किसी ने कहा तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माँ के इताअत करो, क्योंकि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। सबसे प्रणम्य चीज जो है वो धरती माता होती है,
जी
वरना जो है सजदा आसमान पर मुंह करके करना चाहिए ना,
जी बिल्कुल
जमीन पर काहे को सजदा करता है।
जी
धरती पर मुसलमान 5 बार सजदा करता है,
जी
ये मातृभूमि की ही तो वंदना है, धरती
जी
माता की ही तो वंदना है। तब पंक्तियां कहती हूँ सुनिएगा कि
जी
मम ममता के पग तले जिसने स्वर्ग कहा, आपके रसूल को सलाम वंदे मातरम। कि ममता के पग तले जिसने स्वर्ग कहा, आपके रसूल को सलाम वंदे मातरम। और जिस घड़ी आपके नबी ने यह बात कही, बन गया रब का कलाम वंदे
वाह
मातरम। और मातु तेरी वंदना है जिसको कबूल यहाँ, उसके लिए तो है इनाम वंदे मातरम। और किंतु जय चंद मीर जाफरों के लिए यहाँ, सिर्फ सिर्फ मौत का पयाम
वाह
वंदे मातरम। और
वाह
4 पंक्तियां, मेरा मन करता है कि मैं आक्रोश की भी पढ़ दूं,
जी
सुनिएगा।
जी बिल्कुल स्वागत
कि जो कि शाखों से हंसते सुमन तोड़ दे, जो कि शाखों से हंसते सुमन तोड़ दे, जो कि मजहब को आतंक से जोड़ दे, और भारतीय माँ का वंदन जो कर न सके उनसे कह दो हमारा वतन छोड़ दे।
छोड़ दे। वाह बहुत सुंदर। तो शाबिस्ता जी जैसा
तो
आपने
ये जो
कहा,
मतलब एक बेकार की जिद,
नहीं
समझ रहे हो?
आपने तो बिल्कुल स्पष्टीकरण दे दिया कि रब का कलाम है वंदे मातरम, तो जो लोग
जी
नहीं करते हैं फिर उनको क्या कहा जाए, उनको काफिर कहा जाए।
बिल्कुल कहे, बिल्कुल कहे। माँ की इताअत कौन नहीं करेगा?
बताइए
हम तो खुद कह रहे हैं कि आप जबान से नहीं कहते, ठीक है, लेकिन आप 5 बार इस धरती माता पर सजदा करते हो,
जी बिल्कुल
इस भारत की भूमि पर सजदा करते हो। तो अगर वंदे मातरम से इनकार है तो फिर धरती माता पर, मतलब मातृभूमि पर सजदा न करो भाई, आसमान पर
आसमान से
करो।
करो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा
नहीं?
आपने, बिल्कुल ठीक कहा।
तो आपसे तो मोहम्मद साहब ने मातृभूमि की इताअत पहले ही करवा ली।
जी बिल्कुल। तो अगर वो बात नहीं मान
पांच
रहे
बार
हो, क्योंकि
सजदे
मोहम्मद
का
साहब
हुक्म
की बात
देकर।
नहीं मान रहे हो तुम।
जी, सीधी बात ये,
बिल्कुल।
कभी इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी आपसे।
मैं क्या बोलूं शाबिस्ता जी, आपकी वाणी में तो वो ओज है, वो जोश है जो हम सबको राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कर देता है। और इस विषय पर वाकई एक अलग से बात होनी चाहिए, वंदे मातरम पर ही बात होनी चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत कुछ कहा गया।
वंदे मातरम ही नहीं, बल्कि भावना जी मैं चाहती हूँ कि एक चैप्टर आप रखें कि जो मोहम्मद साहब ने सिखाया,
जी
क्या
जी
आज का मुसलमान उस पर चल रहा है, या
बिल्कुल
सिद्धांत बदल गए, या फिर इस्लाम मोहम्मद साहब की मौत के बाद ही अफरत हो गया। मैं चाहती
जी
हूँ कि आप इस पर एक विस्तार से चर्चा
बिल्कुल करेंगे शाबिस्ता जी।
रखें। जी
आपने आज कहा तो इस बात पे हम लोग जरूर गौर करेंगे और इस विषय पर एक हम लोग रखेंगे, पूरी सीरीज ही होनी चाहिए। वास्तव में जो इस तरह के विषय हो जाते हैं जिनके ऊपर इतना विवाद होता है और देश में हल्ला मचाया जाता है, उनके ऊपर तो बातचीत तो कम से कम होनी चाहिए।
जी जी
जी
जी
बिल्कुल। और कुछ शाबिस्ता
और
जी?
भाग्य जी, मेरा मन कर रहा है कि मैं आज जो है गणतंत्र दिवस है,
जी
महिला सशक्तिकरण की बात बहुत होती है,
जी जी बिल्कुल
तो एक बात प्रश्न ये भी उठता है कि आज आप सुनती हैं कि कदम कदम पर
जी
बलात्कार जैसी जो है वो मानसिक विकृति सामने आती है,
जी जी
और फिर भी हम महिला सशक्तिकरण का ढोल पीटते हैं,
बिल्कुल
कहते हैं कि प्राचीन काल में औरतों का बहुत शोषण होता था। लेकिन देखिए, प्राचीन काल में औरत कितनी सशक्त थी।
जी
सीता जी अशोक वाटिका में है, रावण आता है, वो एक तिनका उठा लेती है
बिल्कुल
और उस तिनके के ओट से वो रावण से बात करती है। तो ये तिनका नहीं था, मेरे हिसाब से ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था,
वाह बहुत सुंदर
आत्मबल था।
बिल्कुल
रावण को तो अशोक वाटिका में सीता जी ने परास्त कर दिया था,
जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने।
उसको बाद में राम ने मारा, पहले तो उसको सीता जी ने ही मार दिया था मानसिक
बिल्कुल
रूप से। तो
बिल्कुल
गार्गी अपाला क्या बात थी उस समय की महिलाओं की। तो
बिल्कुल
आज कहीं ना कहीं नारी का सशक्तिकरण का हम चाहे जितना ढोल पीटे, लेकिन कहीं ना कहीं हम कमजोर हुए हैं।
ठीक कह रही हैं आप, या कह लीजिए कि
और
सशक्तिकरण के मायने बदल गए हैं।
हाँ, यह सशक्तिकरण के मायने बदल गए हैं भावना जी। देखिए मैं बताऊं आपसे कि हम नारी जो है, देखिए अब आप इसको कह लीजिए कि हम शायद पुरातन पंथी हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि नारी जो है वो एक बहती हुई सरिता है
जी
प्रबल वेग से।
जी जी
तो अनुशासन के जो बांध लगाए गए उस पर, वो भी कहीं ना कहीं उसके अब जैसे शक्ति थी तो शक्ति के साथ शिव को लगा दिया गया,
जी जी
तो कहीं ना कहीं उसके उस वेग को रोकने के लिए जो हमारे कहना चाहिए कि हमारे पूर्वज थे, उन्होंने एक जो प्रतिबंध लगाया था, तो मेरे विचार से वो उचित है। आज जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण नारियां कर
जी
रही हैं, तो
जी
मुझे तो भाई ये नहीं अच्छा लगता और पसंद भी नहीं है। ये नहीं कि हम कहते हैं कि आप जीन शर्ट ना पहनो, आप जीन शर्ट पहनो,
जी बिल्कुल
लेकिन आप अर्ध नग्न पहनावा तो ना पहनो।
बिल्कुल
भारत
बिल्कुल
की एक परिपाटी रही है, यहाँ पर रानी पद्मिनी, रानी कर्मवती जैसे लोग हमारे सामने मौजूद रहे हैं। और क्या आप कहेंगे कि साड़ी में सौंदर्य नहीं होता? मैं तो कहती हूँ कि अर्धनग्न पहनावे से कहीं अधिक जो हमारे यहाँ की साड़ियां, लहंगा चुनरी, ये सब कितने प्यारे परिधान थे।
नहीं, और फिर रानी पद्मावती ने या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, उन्होंने कितने वीरतापूर्ण कार्य कार्य किए हैं, तो क्या
जी
उनको
जी
आप
जी
किसी मायने में आज की नारियों से कम कह सकती हैं? मेरे ख्याल से
नहीं,
उनको बहुत
बिल्कुल नहीं
आगे
कह
थी
सकते
आपसे भी।
जी।
जी
अब आप देखिए, हम बता रहे हैं कि सोशल मीडिया आप देख रही हैं, मैंने देखा कि नारियां जिस तरह के जो है वो बोल रही हैं, भाषा जिस तरह की इस्तेमाल कर रही हैं,
जी
तो या फिर तो जब हम अपनी नैतिकता कहीं खुद खोएंगे तो पुरुष भी अपनी नैतिकता खोएगा
बिल्कुल
स्वाभाविक रूप
बिल्कुल
से।
बिल्कुल बिल्कुल,
अगर हम नैतिकता का पालन करेंगे तो सामने वाला भी नैतिकता का पालन
ये
करेगा।
तो होता ही है,
आप
इसीलिए सबके
बताइए
साथ नहीं होता
हम
वो सब जो लोग इस तरह से करती हैं। फिर आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, कमेंट्स वहीं पर आते हैं जहां ऐसी पोस्ट होती हैं।
जी, और मतलब बहुत ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो देश का माहौल बदल सक गया है। आज देखिए आप कि जिस तरह से ट्रोल करते, चलिए आप कोई गलत नारी है जो आपसे असभ्य भाषा में बात कर रही है, आप जो है उसको ट्रोल करें करें
जी
अच्छा लगता है,
जी
लेकिन एक बुद्धिजीवी नारी अपने विचार रखती है। अगर आप
जी
उससे असहमत हैं, आप शालीनता से तर्कों के साथ अपनी असहमति दर्ज कराएं,
जी
लेकिन जिस तरह से अपमान सूचक संबोधन दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत मन आहत होता है।
बिल्कुल बिल्कुल
और विशेषकर राजनीति में,
जी
राजनीति तो अटल जी के समय में भी थी
जी
और
जी
अटल जी को उनके समर्थकों से ज्यादा उनके विरोधी सुनते थे
जी
और
जी
बड़े प्यार से सुनते थे।
जी
क्या अटल जी ने कभी कोई अश्लील टिप्पणी की थी? तो ये ऐसे कौन से कारण थे? मैं थोड़ा सा फिर आऊंगी गणतंत्र दिवस पर,
जी
लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़े जब चल ही रहे हैं तो थोड़े इन कारणों पर भी जोले। आखिर वो कौन से कारण हैं जो आज इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई?
जी
कहा जाता है कि नारियां जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं,
जी बिल्कुल
लेकिन अब तो भारतवर्ष में ऐसा नहीं दिखता।
जी
हम राम की तो कल्पना करते हैं, लेकिन हम उस कौशल्या की कल्पना नहीं करते जिसने राम जैसा बेटा इस संसार को दिया था।
ठीक कह रही हैं बिल्कुल
जब तक कौशल्या नहीं होंगी तब तक राम कहां से आएंगे? और कौशल्या जैसी नारियां तब आएंगी जब आप कहेंगे कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं।
बिल्कुल
लेकिन आप तो बोलते हो कि मुन्नी बदनाम हो गई,
जी
नारी झंडू का बाम हो गई, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। बताइए जिस तरह के गाने आए और हमने उनको खुशी से एक्सेप्ट किया, हमने अपने यहाँ शादी विवाह में बाकायदा जो है उसको उस पर नृत्य किया, तो ये क्या है? ये मैकाले ने कहा था कि किसी देश को तोड़ना हो तो सबसे पहले उसकी संस्कृति पर प्रहार करो।
बिल्कुल,
तो ये जो हमारा नैतिक क्षरण है वो कहीं ना कहीं मैकाले के स्वप्न को पूरा कर रहा है
जी, और उसमें दोषी हम भी हैं क्योंकि हम उन चीजों को, जैसा आपने कहा, कि स्वीकार करते हैं।
हाँ हाँ जी, हम उन चीजों को स्वीकार करते हैं, और मैं पहली पहला दोष पहली जो है दोषी अपने आप को मानूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम में भी कुछ कमी आई है। तो देखिएगा कि मुन्नी बदनाम जैसे गाने आए क्यों? मुन्नी तो हम लोग अपने घर की छोटी छोटी बच्चियों को कहते
जी,
थे
बिल्कुल,
कि मुन्नी कहाँ जा रही हो, लेकिन ये गाना आने के बाद कौन सा बाप ऐसा होगा जो अपनी बिटिया को मेले में घुमाने ले जाएगा और उसको मुन्नी कहकर संबोधित कर
ठीक
सकेगा
कह रही हैं,
जहाँ
बिल्कुल
ये गाना लगा हो, है?
ठीक
अब
कह रही
सुनिएगा। हाँ, पहले अपने देश की उन वीरांगनाओं को नमन करती हूँ जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। चार पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा
जी, स्वागत।
कि कभी बेटी बहन बनकर ये हमसे प्यार करती है, कभी बेटी बहन बनकर ये हमसे प्यार करती है, कभी जन्मों का बंधन हंस के ये स्वीकार करती है, और ये माना है बहुत कोमल मगर भारत की ये नारी समय आने पे अंगारों से भी श्रृंगार करती है। आप देखिए कि किस तरह से ये गाने मार्केट में आए, ठीक है
जी जी
कि पछवा की हवा है चली जब से, पूर्वा की हवा गुमनाम हुई, पछवा की हवा है चली जब से, पूर्वा की हवा गुमनाम हुई, गुमनाम हुई सी आराधिका तो अब सूप नखा है सुनाम हुई, सुनाम हुई जब रूप बिका तब नारी है झंडो का बाम हुई, और बाम हुई जब माँ घर की मुन्नी बिटिया बदनाम हुई, और बदनाम हुई उस भारत में जहाँ मीरा सी प्रेम दीवानी हुई, दीवानी हुई सतियों की धरा जहाँ नारी भी वेदों की ज्ञानी हुई, ज्ञानी हुई तो अपाला बनी और वीर वो झांसी की रानी हुई, और रानी हुई जिसे भूल गए अब शीला की अध जवानी हुई। तब चार पंक्तियां अपने देश के पुरुषों के समक्ष रखती हूँ और सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, भावना जी सुनिएगा कि हृदय की गहराइयों से कहीं ये सवाल निकला है। पंक्तियां सुनिए
जी, सुन
कि मुन्नी बिटिया बदनाम हुई उसे मेले में आप घुमाओगे कैसे, और जिस सीता का मन बचा न सके उन हाथों से राखी बंधाओगे कैसे, और जिसकी धुन पर तुम नाच रहे खुद का अनुमान लगाओगे कैसे, अरे नवराते में कन्या जो मुन्नी मिली पग पूज के भोग लगाओगे कैसे, और नवराते में कन्या जो मुन्नी मिली पग पूज के भोग लगाओगे कैसे, और नारियों का अपमान देश में जो होता रहा कोई सतयम को हराने नहीं आएगी, और रक्त बीज महिषासुरों की होगी भीड़ यहाँ आदिशक्ति तुमको बचाने नहीं आएगी, और पद्मिनी कर्मवती दुर्गा व चांद बीबी युद्ध वाले जौहर दिखाने नहीं आएगी, और कोई भी फिरंगी यदि देश में जो आ गया तो लक्ष्मी बाई गोरों को मिटा नहीं आएगी, और हमारी संतानें कैसी होंगी कि चक्रव्यूह भेदना जो गर्भ से ही सीख ले वे कोख से हमारे वो ललाम नहीं आएंगे, कि चक्रव्यूह भेदना जो गर्भ से ही सीख ले वे कोख से हमारे वो ललाम नहीं आएंगे, और जीजाबाई वाली आत्मा जो मेरी लुप्त हुई गोविंद शिवा से वो सुनाम नहीं आएंगे, और बिस्मिल अशफाक भगत आजाद यहाँ भारती को करने प्रणाम नहीं आएंगे, और देश की जो नारियां यूं ही बदनाम हुई कोख से हमारे श्री राम नहीं आए।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
और ये मैंने भूमिका दी थी अपनी उस कविता के लिए जो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही प्रसिद्ध हुई, और भावना जी, लोग अकबर इज द ग्रेट लिखते हैं,
जी
लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझको सिखाया था कि बेटा राणा प्रताप इज द ग्रेट, अकबर इज द ग्रेट नहीं।
बिल्कुल
और फिर मैं बीकानेर गई तो बीकानेर में मैंने एक तस्वीर देखी कि अकबर धरती पर गिरा हुआ था और एक रानी उसके सीने पर पैर रखे हुए थी और कटार जो है अकबर की गर्दन पर थी। तो मैंने वहां लोगों से पूछा कि ये किसकी तस्वीर है, तो उन्होंने कहा कि ये जो है सूर्य किरण की तस्वीर है,
जी
रानी सूर्य किरण की। तो फिर मैंने उनकी पूरी कथा जानी और मैंने उसको कविता में बांधा। सुनिएगा
जी बिल्कुल स्वागत है सुनिए।
कि कथा है, जब भारत में मुगलों का झंडा फहराता था, दिल्ली का एक बादशाह मीना बाजार लगाता था, राजपुतानी स्त्रियों को जबरन वहां बुलाता था, पराधीन राजाओं का सर लज्जा से झुक जाता था कि दुशासन हंस रहा और अर्जुन का पौरुष सोया था, इस स्थिति को देख हिमालय फूट फूट कर रोया था। एक दिन इन बाजारों में आई थी एक सुंदर बाला। भावना जी, वीर रस के कवि जो है वो श्रृंगार रस बहुत बढ़िया लिखते हैं
अच्छा जी
जी। तो हाँ, बहुत सवाल हुए थे ना कि चोली के पीछे क्या है, देखिएगा
जी
बिल्कुल घोर श्रृंगार लिखती हूँ कि चोली के पीछे क्या है। कि
जी
एक दिन इन बाजारों में आई थी एक सुंदर बाला, अंग अंग में मादकता थी, यौवन की थी मधुशाला, पीली लहंगा चोली में अप्सरा उतर कर आई थी, या जाड़े की घाम धरा का चुम्बन लेने आई थी, और उन्नत वक्षों पर नारंगी आंचल जब लहराता था, अरे मानो मंदिर पर जैसे भगवा झंडा लहराता
बहुत
था। कि मंदिर की ये दिव्य ज्योत निर्भय वो कदम बढ़ाती थी, किंतु विवेक ऐसा था कि हर आहट पर रुक जाती थी, पद्मिनियों की वंशज थी, सुख वैभव नहीं लुभाता था, बार बार सुधियों में उसके चिता का बिस्तर आता था, एक नकाबपोश मानो उसके पीछे पीछे था घूम रहा, उसके रूप लावण्य को नैनों से अपने चूम रहा, एक खेमे के भीतर उसने नारी को एक खींच लिया, मानो किसी भेड़िए ने हिरनी को कर में भींच लिया, और बाहों में आकर नारी फिर महिषासुर मर्दनी बनी, बिना गवाए समय हिरनी वहां शेरनी बनी, कि दुश्मन की छाती पर सिंगनी के पंजे की चोट पड़ी, देश शत्रु की पीड़ा से गिरकर धरती पर लौट गई, सीने पर फिर पैर रखा, गर्दन पर रखी कटारी है, लगता है रण चंडी बनकर दुर्गा वहां पधारी है, कि दोनों चितवन मिले क्रोध से, धरती माँ चिल्लाई है, अरे लगता है तिरकुट छोड़कर शेरा वाली आई है।
बहुत
कि
सुंदर
नोच लिया बढ़कर नकाब, रानी को आया चक्कर था, उस नकाब के पीछे देखा वो तो राजा अकबर था, बोली रानी समझ गई तेरा मीना बाजार यहाँ, इसके पीछे कामुकता का चलता है व्यापार यहाँ, बोला अकबर रानी तुझको सारे सुख वैभव दूंगा, प्रेम तुझे इतना दूंगा हृदय की गागर भर दूंगा, प्रेम शब्द सुनकर रानी ने फिर से अट्टहास किया, प्रेम तुम्हारी कूटनीत है कैसा ये प्रयास किया, कि प्रेम हमारे भारत में है मीरा का दीवानापन।
जी
14 फरवरी वेलेंटाइन डे मनाते हैं, अरे
बिल्कुल
हमारे यहाँ का प्रेम वेलेंटाइन डे आप किस लिए मनाते हैं? तब पंक्तियां कहती हूँ सुनिएगा, कि प्रेम हमारे भारत में है मीरा का दीवानापन, प्रेम कन्हैया की बंसी है राधा का है अल्हड़पन, प्रेम पिया का बिंब है जिसका सजनी बन जाती दर्पण, प्रेम खोज में कस्तूरी के हिरनी का है पागलपन,
वाह
कि प्रेम प्रेम चकोरी से चंदा का मीठा एक अनुबंध बना, और पपीहा से स्वाति का कोमल एक संबंध बना, कि प्रेम मोगरे के जैसा है खुश हो तो महकाता है, और अगर रूठे खुद का एहसास नहीं करवाता है, एक जन्म का नहीं प्रेम तो 7 जन्म का नाता
बहुत
है, प्रेम मेरा पति के घर से शमशान भूमि तक जाता है, और
बिल्कुल
प्रेम कठिन प्रमेय कि जिसका अपर मेह हर कोण लगा, अरे राष्ट्र प्रेम के आगे ये सिंदूर भी हमको कौन लगा। कि सुन अकबर नारी का हम इतिहास तुझे बतलाते हैं, काल चक्र को हम अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं, पन्ना बनकर देश प्रेम पर सुत की भेंट चढ़ाते हैं, कि एक अकेले तिनके से रावण को मार गिराते हैं, और मेरे चरणों की रज से ये बाग सुवासित होते हैं, अरे तुम क्या हो अकबर हमसे यमराज पराजित
बहुत
होते हैं। कि मेवाड़ सुता हूँ जो वीरों की जन्मभूमि कहलाता है, खतरे में हो लाज देश की बच्चा लड़ने आता है, कल्याणी का बेटा तैमूर उसको मार भगाता है, अंगारों से खेलूं तो सुन जौहर वो कहलाता है, कि सूर्य किरण है नाम हमारा, लाज हमारा गहना है। सांगा का नाम सुना होगा, पर वो बाबा अपना है। सांगा की पोती को अब इतिहास नया एक रचना है, खून से तेरे बाबा के घावों पर मरहम रखना है। मेरे बाबा के भैसे पीली घाटी की माटी है, इसीलिए उस घाटी को सब कहते हल्दी घाटी है। और तेरी गंदी चालों को मैं आज मसल कर रख दूंगी, अरे मैं सूर्यवंश की छत्राणी इतिहास बदल कर रख दूंगी। कि थर थर कांप उठा अकबर, बोला माता उपकार करो, प्राण दान मुझको दे दो, मेरा भी कुछ उद्धार करो। कि ये असुर प्रवृत्ति के लोग बहुत डरपोक होते हैं, बस थोड़ी सी ताकत की आवश्यकता होती है। सुनिएगा कि थर थर कांप उठा अकबर, बोला माता उपकार करो, प्राण दान मुझको दे दो, मेरा भी कुछ उद्धार करो। कि सुत का हर अपराध क्षमा एक माही तो कर पाती है, शक्ति दायनी दया तुझे इस बेटे पर न आती है। पापी बच्चों को भी गंगा अपने पास बुलाती है, पापी बच्चों को भी धरती अपने पास सुलाती है। सुनकर रानी बोली अकबर, दे दी तुझको माफी है, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना भी परिपाटी है। किंतु शर्त है, भारत में कल से व्यभिचार नहीं होगा, अरे कल से आगरे में कोई मीना बाजार नहीं होगा। छह महीने के बाद ये मीना बाजार बंद हो गया था। किसी भी इतिहासकार ने ये नहीं लिखा कि किसने बंद कराया था। पंक्तियां सुनिएगा कि धन्य है रानी तूने बाजारों को बंद कराया है, धन्य है रानी तूने बाजारों को बंद कराया है, पर नारी ने खुद अपना देखो बाजार लगाया है। त्याग दया ममता करुणा को हमने है बदनाम किया, वैभव के पर्दे पर खुद की सुंदरता नीलाम किया। और पछवा की मनचली हवा में पुरवा का घूंघट भूल गई, सागर के खारे पानी में पनघट का तट भूल गई। जय हिंद, वंदे मातरम।
बहुत सुंदर साबिस्ता जी, ठीक कहते हैं, जब आप काव्य पाठ करती हैं तो राष्ट्रीयता का एक सैलाब आ जाता है और उसी में डूब जाने का मन करता, बल्कि मन क्या करता, मैं तो डूब ही चुकी हूँ। बहुत सुंदर, और रोंगटे खड़े हो गए आपकी इस कविता को सुनकर। और सूर्य किरण जिनका नाम आपने लिया, मेरे ख्याल से इतिहास में कहीं उनका नाम नहीं है
जी, जी।
और इस देश का कोई बच्चा बूढ़ा जवान, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादातर लोगों को इनके नाम से कोई परिचय नहीं होगा किसी का भी
जी, जी, जी।
जबकि इतिहास में ये बात हमें पता होनी चाहिए, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है।
जी देखिए, मतलब हमेशा से ये होता रहा है कि जब भी कोई सत्ता आती है, चाहे वो राजतंत्र की बात रही हो चाहे प्रजातंत्र की, तो मैं देखती हूँ कि कवि जो है वो क्या करते हैं कि अपनी कलम गिरवी रख देते हैं वहाँ पर।
जी, जी, जी।
बदले में उनको कुछ स्याही मिल जाती है, कुछ कागज के पन्ने मिल जाते हैं, उसी पर इतिहास लिखा जाता है।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
कुछ ही लोग होते हैं जो खुलेआम जो है वो सत्ता के विरोध में बोलते हैं।
बिल्कुल,
और ऐसा ही जो है उस समय हुआ, क्योंकि उस समय जाहिर है कि राजा कोई दूसरा था, हमारे रणबांकुरे लड़ रहे थे, है तो जो इतिहास लिखा गया वो कहीं ना कहीं हमको कम आंक कर लिखा गया। उद्भव का इतिहास नहीं लिखा गया, पराभव का इतिहास लिखा गया
जी।
मुझे ये कहने में कोई भी दिक्कत नहीं। और भावना जी, मैं फिर कहूंगी कि ये बातें मुझे ब्रजेश जी ने नहीं सिखाई, ये बात मेरे मुस्लिम माँ बाप ने सिखाई। इसलिए कह रही हूँ कि मीडिया को ओवैसी तो याद रहते हैं, लेकिन मेरे पिता सैयद अली कौशल जैसी कितनी हस्तियां मुसलमानों में है उनको भी दिखाना चाहिए।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
और यही कारण है कि हमारे देश में वैमनस्य फैल रहा है।
तभी आपको पता है, आज हमने अपना 26 जनवरी का कार्यक्रम, जैसी मेरी और आपकी बात भी हुई थी, और भी दो तीन कवियों को हम लोग लाना चाहते थे अपने कार्यक्रम में, लेकिन फिर मेरे भी दिमाग में यही आया कि नहीं, आज आपकी बात हो इस अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और इन बातों को भी हम लाएं जो नकारात्मकता फैलाती है हमारे समाज में, हमारे देश में। और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रभाव जाएगा। और आपने जैसा वंदे मातरम के बारे में बताया, या ये आप सूर्य किरण रानी का जो आपने, और ये कविता जो आपने सुनाई, वास्तव में इस कविता ने आपके पूरे देश में एक शोर मचा दिया था, हाहाकार मच गया था आपकी इस कविता को सुनकर, मुझे पता है। और मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं क्या आपको कहूं।
और भावना जी, ये तो बात हमने अतीत की किया ना
जी, जी।
अब कुछ वर्तमान की भी बात
जी, बिल्कुल।
वर्तमान में चाहे जिसकी भी पार्टी की सरकार रही हो, क्योंकि मैं किसी पार्टी की एजेंट नहीं हूं
जी, बिल्कुल।
मैं बताऊं आपसे कि मैं जब कांग्रेस सत्ता में थी तो मैं उसके विपक्ष में ही बोलती थी।
जी
मैं
बिल्कुल
नीतियों के आधार पर किसी पार्टी के समर्थन करती हूँ, क्योंकि कवि जो है वो सजग प्रहरी होता है।
करने भी यही चाहिए, बिल्कुल होना भी ऐसा ही चाहिए
जी, तो मेरा आशय किसी भी पार्टी से नहीं है,
जी,
मेरा
जी
आशय पूरी, मतलब मैं पूरी राजनीति को एक ही तराजू में तोलती हूँ।
बिल्कुल
पहले मैं सोचती थी कि शायद आने वाले कुछ अलग होंगे, लेकिन अब नहीं, अब तो यही लगता है कि वही सब कुछ रिवीजन है। चेहरे बदलते जाते हैं, व्यवस्थाएं नहीं बदलती, केवल चेहरे बदलते हैं।
जी जी
तो आज का जो परिवेश है, हम देखते हैं कि गण और तंत्र के बीच एक रिक्त स्थान आ गया है। ये शब्द कुछ दूर दूर हो गए हैं।
जी
गण अलग है, तंत्र अलग है।
जी
बस इन्हीं पंक्तियों को लेकर वर्तमान में यथार्थ के धरातल पर मेरी लिखी हुई एक कविता मैं करना चाहती हूँ, और मुझे अच्छी लगती है कि भावराव देवव्रत संस्थान की जो पत्रिका निकलती है, जब मेरे ऊपर अटल जी की कविता थी और नीचे जो है वो मेरी कविता थी, तो
जी
मुझे
हाँ
लगा कि मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य
बहुत
है
बड़ा
मेरे लिए।
सम्मान, बिल्कुल
जी,
ठीक है, बिल्कुल
तो भावना जी मैं वो कविता सुनाती हूँ,
बिल्कुल
सुनिएगा।
सुनना चाहूंगी
कि गण और तंत्र,
जी
पहले था कि जुड़े हुए थे, गण धन तंत्र
जी
जनता का तंत्र, लेकिन
जी
आज देखते हैं तो जनता अलग खड़ी दिखाई देती है, तंत्र कहीं अलग काम कर
जी
रहा है।
बिल्कुल
जनता के हित पर कुछ नहीं हो रहा, किसी भी सरकार में ऐसा नहीं है, किसी एक की सरकार में हुआ,
जी जी
सारे नेताओं ने अपने गोदाम भरे हैं।
बिल्कुल
वो बृजेश त्रिपाठी जी ने कहा, उस दिन पढ़ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सारी दौलत कुछ घरों तक, घरों में है, इकट्ठा हो गई, और ये तरक्की है तो फिर समझो तरक्की हो गई।
बहुत सही, बिल्कुल सही
तो पंक्तियां सुनिएगा कि लाज से पल के झुकाए देश के हिमखंड है, लाज से पल के झुकाए देश के हिमखंड है, जल रहा है शौर्य अब तो संयमों के कुंड है, कि स्वार्थ की आंधी में तृण बन उड़ गई संवेदना, मांग सुनी रह गई विधवा बनी हर कल्पना, है विदुर हर गीत टूटा भावना का तंत्र है, पूछती हूँ मैं स्वयं से क्या यही गणतंत्र है,
बहुत सुंदर,
कि संस्कृति के द्वार पर अब नीति की साकल नहीं, आस्था के शीश पर विश्वास का आंचल नहीं, नग्न स्वागत को खड़ी है देश में निर्लज्जता, अब पुरातन भित्ति चित्रों में बची है सभ्यता, देह तो स्वाधीन है पर आत्मा परतंत्र है, पूछती हूँ मैं स्वयं से क्या यही गणतंत्र है, कि अब अनाथों की तरह हर स्वप्न पलते नैन में, खो गई संभावनाएं इस अंधेरी रैन में, कि प्रेरणाओं की सतह पर जम गई अब धूल है, शौर्य साहस के कथानक गुलरों के फूल है, सिर्फ अधरों पर ही वंदे मातरम का मंत्र है, पूछती हूँ मैं स्वयं से क्या यही गणतंत्र है। और विकास कितना हुआ हम लोगों का आज तक,
जी।
तो बहुत दुखद स्थिति है। आप देखती होंगी नहीं कि ठंड आया नहीं कि लोग कंबल बांटने लग जाते
जी,
हैं,
जी।
और कंबल एक गरीब को आठ आठ लोग मिलकर एक कंबल उड़ाते हैं और फिर तस्वीरें देते हैं।
जी बिल्कुल
राशन बट रहा है, लंबी लाइन लगी हुई है, बड़े घमंड से हम बताते हैं कि 5 करोड़ लोगों को हमने फ्री राशन दिया। क्या कभी सोचा कि विश्व में भारत की तस्वीर क्या जाती है, कि अभी भी हमारे देश में 5 करोड़ भीख से खाने वाले लोग मौजूद हैं।
जी
तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा, कि है यही उपलब्धि अपनी निर्धनों की सुसकियां, है यही उपलब्धि अपनी निर्धनों की सुसकियां, रेशमी बिस्तर पे टूटी अनगिनत है चूड़ियां, कि ढेर में कूड़े की रोटी खोजता बचपन मिला, मुझको फुटपाथों पे सोता देश का यौवन मिला, पृष्ठ पर सत्ता है केवल हाशिया जनतंत्र है, पूछती हूँ मैं स्वयं से क्या यही गणतंत्र है, कि वो फसल नफरत की अब घर में हमारे बेचते, बैठ दर्शक दीर्घा में हम तमाशा देखते, अब तो हर नेत्र बन बैठा मिरग मरीच का, चित्र सारे है अधूरे है विखंडित तूलिका, कि क्या करें हम भी शबिस्ता भ्रष्ट सारा तंत्र है, पूछती हूँ मैं स्वयं से क्या यही
आपने
गणतंत्र है। और
आपके
अब भावना जी,
प्रश्नों का शायद जवाब मिल जाए शाबिस्ता जी जल्दी, हम तो यही चाहेंगे।
जी, और मेरे ख्याल से गणतंत्र दिवस के लिए काफी सुना दिया हमने, है फिर किसी और दिन सुनाए
बिल्कुल
विस्तृत चर्चा पर। तो यहीं पर वाणी को विराम देते हैं, और सभी पाठकों को और जो भी ये सुन रहा है या सुनेगा उसको बारंबार धन्यवाद, और एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की
और
बधाई।
साबिस्ता जी, अंत में मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि जन्म से लेकर मोक्ष तक हम सबके जीवन में कई पड़ाव आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जहां हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिले, और
जी
वहां
बिल्कुल
हमारे निजी हित या स्वार्थ जो है वो मायने नहीं रखते। तो अगर कुछ मायने रखता है तो वो सिर्फ देश हित होता है। तो आज के दिन हमको ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम देश हित के बारे में ही सोचें, और छोटी छोटी चीजों से भी हम अपने देश प्रेम के जज्बे को छलका सकते हैं, बाहर
जी
ला सकते
बिल्कुल
हैं। तो
बिल्कुल
उनका
बिल्कुल
बहुत बहुत आभार, आज आपने हम सबको देशभक्ति के रस में सराबोर कर दिया, और सभी देशवासियों को फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।
जी,
जल्दी
धन्यवाद बहुत। देखिए हमने आपकी कविता में, मेरी कविता में भावना नाम की,
जी,
भावना का
कई बार
प्रयोग
भावना
कितनी
नाम
बार
आया
हो
शाबिस्ता जी।
जी
बिल्कुल, उसके लिए भी आपको धन्यवाद।
जी
जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।